उमंगो की उड़ान है, आशाओं का आसमां, सेवा का लक्ष्य महान, संग सर्वशक्तिमान।
हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने तारा जहां, तारा जहां।
The wings of Brahma Kumari.
We are the wings of Brahma Kumari.
Namaskar, Om Shanti. विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि शांति के समय पर भारतीय सीमा की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की जाती है, जिनका काम है भारत के अंदर किसी भी घुसपैठ को रोकना, ताकि हमारे देश के अंदर चैन और अमन की स्थिति कायम रहे। और वहीं भारतीय सेना का काम युद्ध के समय पर दुश्मनों के क्षेत्र में उनसे युद्ध करके फतह को हासिल करना है। लेकिन हम देखते हैं कि शांति के समय पर भी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, और हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इसके कारण है और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमार अशोक गाबा जी। भाई साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
नमस्कार।
तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, तनाव आज जीवन के हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में है। आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। जैसे जैसे हमने देखा, पहले वो बात इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो तनाव की बात भी सिक्योरिटी फोर्सेस में पर्टिकुलरली बढ़ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि सुसाइड रेट्स, एंग्जाइटी, ये स्लीपलेसनेस, ये सब बातें हमें आज ज्यादा रेशियो में दिखाई देती हैं। तो मैं आपसे पहले तो जानना चाहती हूँ कि इसके एक तो क्या क्या रीजंस है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है।
जहां तक रीजंस का सवाल है, वर्तमान समय सुसाइड रेट्स पहले से अधिक हो रहे हैं, सारे संसार में ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस में सुसाइड रेट का बढ़ना सचमुच एक अलार्मिंग विषय है
जी।
लेकिन जहां तक हमने इनको एनालाइज किया है, जब सैनिक छुट्टी से वापिस आता है उस समय उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं एकदम रिफ्रेश होकर छुट्टी काट कर आया है, तब तो बहुत आनंद से रहेगा। लेकिन 70% सुसाइड्स छुट्टी से लौटने के एक सप्ताह के अंदर ही हो जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वो कुछ कैरी होम करता है अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को। जब ड्यूटी पर तैनात रहता है नॉर्मली, तो उतने सुसाइड्स नहीं होते जितने की जब छुट्टी से लौटता है। तो डोमेस्टिक रीजंस भी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
जी।
फैमिलीज का छोटा होना, फिर वो बहुत समय तक बाहर रहता है और अकेला ड्यूटी करता है
जी।
और लेकिन जब लौटकर छुट्टी में आता है तो लोकल प्रॉब्लम्स जो लैंड से रिलेटेड हैं, रिलेशन से रिलेटेड हैं, वो उसको थोड़ा ज्यादा दिखाई देती हैं। और फैमिली में भी आजकल काफी अनरेस्ट देखने को मिलता है, फौजियों के साथ जरा ज्यादा ही देखने को मिलता है। उनकी सिविल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी लोग इनिशिएटिव बहुत कम ले पा रहे हैं
जी।
तो ये एक मेजर रीजन होता है कि उस अपनी प्रॉब्लम्स को साथ लेके आ जाता है। और सबसे बड़ा कारण तो उसके हाथ में मोबाइल है। जब तक मोबाइल नहीं होता था, जवान छुट्टी पे जाता था आराम से, घर से कोई समस्या आती थी, चिट्ठी आती थी
जी।
जब तक जवाब पहुंचता था तो महीना 20 दिन हो जाते थे, और वो प्रॉब्लम्स कब की सॉल्व हो चुकी होती थी। फैमिलीज भी बड़ी होती थी, एक दूसरे का पीछे बहुत ध्यान रखा जाता था। तो इसकी वजह से भी कुछ तनाव बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी भी एक मेन रीजन है। लेकिन मेन चीज जो मैं देखता हूं कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास बड़ा आवश्यक हो गया वर्तमान समय को देखकर। तो जब हम सोल्यूशन की बात करें तो हमें यह देखना होगा कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, अपने जवानों को वो टेक्निक्स कैसे सिखाएं। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी कही कि स्लीप की कमी। हमने एक अभी रिसर्च कराई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में
जी।
और उसमें ये सामने आया कि 77% ऑफ द सोल्जर्स, दोज हु डू पेट्रोल ड्यूटी, रेगुलर शिफ्ट ड्यूटीज ऑन द बॉर्डर्स, उनको नींद की कमी की कंप्लेंट रहती है। जब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम ने एक नया विषय निकाला है, तनाव के साथ साथ निद्रा प्रबंधन, स्लीप मैनेजमेंट एंड मेंटल एम्पावरमेंट, हम उस विषय का नाम रखते हैं। तो उसमें हमने वो बताते हैं कि स्लीप को कैसे मैनेज किया जाता है। सचमुच स्लीप तनाव का कारण है नहीं, स्लीप के बारे में पूरी नॉलेज ना होना ये तनाव का कारण है।
जी बिल्कुल।
जैसे वो जवान समझता कम से कम 6-7 घंटे अगर अच्छी तरह से लगातार नहीं सोते हैं तो नहीं सोते, जबकि करता वो शिफ्ट ड्यूटीज है, 4 घंटा ड्यूटी 4 घंटा ऑफ, ऐसे 10-12 साल वो लगातार बॉर्डर पे ड्यूटी करता है और वे समझता है कि मैं तो सोया ही नहीं 10-12 साल से।
जी।
तो ये उसको तनाव का सा कारण हो सकता है। जब उसको इस विषय को हम स्पष्ट करके बताते हैं, स्लीप साइकिल्स के बारे में बताते हैं, स्लीप में क्यों हमें रिफ्रेशमेंट होती है और उनके मन से जो वहम है स्लीपलेसनेस का वो दूर होता है और फिर वो पुनः अपने जोश में आकर के और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर सकते हैं।
ये मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि जब तक आपकी 7-8 घंटे तक नींद नहीं है तब तक आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं माना जाता।
एग्जैक्टली, इट इज मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल बैरियर। आजकल कुछ मार्केट में ऐसी बातें बहुत आनी शुरू हो गई हैं कि अगर 8 घंटे लगातार आप नहीं सोए तो कुछ गड़बड़ है आपको।
जी।
लेकिन इसका मेन कारण सचमुच 8 घंटे की निद्रा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका मेन कारण वो ड्रग इंडस्ट्री जो है वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है, उसको अपनी इनकी गोलियां ज्यादा बेचने की। नेचुरली सभी इंडस्ट्रीज में ये रहता है कॉम्पिटिशन। सचमुच अगर हम देखें जिंदगी में तो कौन रोज 8 घंटे सोता है।
जी।
और जवान तो केवल 4 घंटे सो करके दोबारा ड्यूटी पे चढ़ जाता है, फिर 4 घंटे सो लेता है, फिर दोबारा ड्यूटी कर लेता है, फिर सो लेता है। और अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए उसको कोई बीमारी नहीं होती, उसने एक वहम पाल रखा होता है। मैंने एक बार अपने जवानों से पूछा कि आप इस समय तो कि आप 8-10 साल से सोए नहीं है, तो एक नौजवान से पूछा उसके हौलदार के बारे में कि इसका स्वास्थ्य कैसा है। कहता सर क्या इसका स्वास्थ्य है, मुंह देखिए ऐसे लाल गुलाल और डोले देखिए ऐसे मजबूती के, दो पाकिस्तानी सोल्जर को ऐसा ठोके सर दोनों के दोनों गिर जाते हैं। तो मैंने कहा फिर, तो मैंने उस जवान को कहा इस हौलदार से पूछेंगे भाई तुमने सिक रिपोर्ट कितनी बार किया, आप समझते कि बीमार है। कहता सर किसके पास टाइम है सिक रिपोर्ट करने का, बहुत दूर है वो बॉर्डर पोस्ट, वहां तो मैं जा ही नहीं सकता, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक वहम पड़ गया कि मुझे नींद नहीं मिली।
बिल्कुल।
इसलिए उसको इस विषय से स्पष्टीकरण करने के बाद उसका तनाव काफी कंट्रोल हो जाता है और पिछले कुछ महीनों में तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे।
आपने जैसे 16 इयर्स तक एयरफोर्स में काम किया है, आप रहे भी हैं और ये चीजें आपने भी बहुत डेप्थ लेवल पर ऑब्जर्व की है।
Yes.
क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि स्लीप में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और मैंने उसको कैसे मैनेज किया, पर्सनली आपने कभी करके देखा है?
मेरी तो अगर आप बात सुने तो मुझे बड़ी खुशी होती बताते हुए कि 1971 में जब पूरा एक इंडिया लेवल का वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, हम दो बार उस पर लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो रहा था और वेस्ट पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो रहा था। शायद 71 के बाद कारगिल ऑपरेशन को छोड़कर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। उस समय मुझे इस बात का अवार्ड मिला था कि मैं 4 दिन तक बिल्कुल सोया नहीं। वैसे सच्ची बात यह नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं सोया, बट प्रैक्टिकली जैसा मेरा कमांडिंग ऑफिसर देखता था कि देखो कैसा हमारा नौजवान है, ये बिना सोए हुए 4 दिन तक पूरा ड्यूटी करता रहा है। अंदर की बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक ही ऑपरेशन रूम में बैठ करके लड़ाई के समय में हमें मिलकर कार्य करना होता था, हमारे कमांडिंग ऑफिसर साथ बैठते थे, साथ मुझे बैठना था, पूरे अलर्टनेस के साथ बैठते थे हम, और रात को 2 बजे तक नॉर्मली जो ऑपरेशन थे वो पूरे हो जाते थे। तो कमांडिंग ऑफिसर साहब घर जाते थे, 4 बजे फिर वापस आ जाते थे।
जी।
लेकिन वो 2 घंटे का समय ऐसा क्रुशियल था कि मैं उनको सी ऑफ करके और सल्यूट मारा सर और पहुंचा, और अपने ही जो हमारा ऑफिस रूम का एक हिस्सा होता था जिसे हम रेस्ट रूम के रूप में मेरा ऑफिस था, मैं उसी पर टेबल पर ही सो जाता था। और सचमुच मैं पूरे 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट मुझे अच्छी तरह याद है मैं सो जाता था और एकदम फ्रेश उठता था मैं उसके बाद और अपने आप जग जाता था। और उसके बाद फटाफट मुंह हाथ धोके जब तक गेट पर आना उनको रिसीव करने के लिए साहब ने होता ना, फिर हमने उसको सल्यूट करके वेलकम सर अंदर आ जाते थे। तो वो तो यही देखता था कि अफसर सोया ही
नहीं है,
लेकिन मैं सचमुच बीच में से एक स्लीप साइकिल सो लेता था और उस स्लीप साइकिल में मुझे इतनी डेल्टा वेव्स मिल जाती थी जो मुझे एक बार रिफ्रेश कर देती थी और 4 दिन का समय बड़े आराम से गुजर गया। उसके बाद तो खैर इतना प्रेशर भी नहीं था। तो ये जो बीच में स्लीप साइकिल्स हमको मिल जाते हैं ये हमारे को उस तनाव से दूर कर देते हैं जो चेहरे पर आ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वर्क स्ट्रेस तो सभी को होती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सो लिया उसको एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं। तो वो जो टेक्निक है स्लीप साइकिल्स की वो आजकल नौजवानों को समझाने से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी विंग ने जब से ये कार्य शुरू किया है तब से ही, स्पेशली पिछले 2 वर्षों में तो बहुत इंटेंसिव कार्य हुए, तब से बहुत लोगों के जीवन में काफी बेनिफिट उन्हें महसूस हुआ है।
ये तो जैसे एक हमारा पहलू रहा कि नींद नहीं आना, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है क्योंकि वो परिवारों से बहुत लंबे टाइम तक जो है दूर रहते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत मिस करते हैं, चाहे वो वाइफ है, बच्चे हैं, यदि कोई बीमार भी हो गया और उनको पता लगता है कि मेरे घर पे ये व्यक्ति बीमार है और इधर से ड्यूटी भी कर रहा है तो उसके दिमाग में ये चिंता चलता रहता है कि घर पे बीमार है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को मैनेज करे?
ये प्रॉब्लम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सबसे ज्यादा है और एक्चुअली हमें डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सिक्योरिटी विंग को खास इसीलिए इम्पैनल किया कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज कराएं और ये दो चीजों को खास देखें, एक तो स्लीप की प्रॉब्लम है और दूसरी जो ये सॉलिट्यूड की प्रॉब्लम है, उसको वो अकेलापन महसूस करता है और तीसरा वो बहुत डिप्लीटेड सा महसूस करता है, उसमें जो इनर एनर्जी है अपनी उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो उसको हम कैसे विकसित करते रहे, साथ साथ इम्प्लीमेंट करते रहे, तो इसलिए हमें ये काम दिया गया था। और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो कोर्सेज कराए हैं उसमें हमने दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखा, जैसे कोर वैल्यूज के रूप में ही हमने ले लिया कि कॉन्सेंट्रेशन, करेज और कंपेनियनहुड, इन तीन चीजों का स्पष्टीकरण देते हैं। उसमें कंपेनियनहुड की अगर बात की जाए तो भले वो बॉर्डर पर अकेला बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, पेट्रोलिंग करता है रात में, नेचुरली बिल्कुल ही अकेला महसूस करता है, तो उस समय भी कुछ उसको ऐसी फीलिंग हो कि जैसे मेरा कोई सर्वशक्तिवान से, एक लाइट से, पावर से, एनर्जी से मेरा कनेक्शन, मैं जब चाहे संकल्प करता हूं और जुड़ जाता है और फिर मुझे लगता है कि खुदा दोस्त के रूप में, मेरा भगवान दोस्त के रूप में मेरे साथ चल रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, ऐसी फीलिंग उसको आने शुरू हो जाए। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं और काफी अच्छी सक्सेस मिली है।
मतलब उसमें गॉड इज कंपेनियन?
यस, उसमें वो जो पहला चैप्टर था उसका कॉन्सेंट्रेशन का है, कॉन्सेंट्रेशन में तो हमें उसे मेडिटेशन का तरीका सिखाना होता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का सिस्टम सिखाते हैं हम, तो जब हम उसे मेडिटेशन सिखाते हैं तब वो बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से अपने काम को करता है, मीन्स ही इज अपेरेंटली बाहर से देखने के लिए उसके फायरिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो अधिकारी लोग बड़े खुश होते हैं कि देखिए इस जवान को जिसको हमने मेडिटेशन सिखाई है, इसकी फायरिंग बहुत अच्छी करता है, उसके एम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ फायरिंग स्किल के साथ साथ उसकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, जिसे हम करेज के रूप में से कहते हैं, यू आर एन एटर्नल एनर्जी, जिसे हम लोग आत्मा कह देते हैं, किसी जवान को पूछते हैं भाई ये बताओ जिंदा इंसान में और मुर्दा इंसान में क्या फर्क है,
जी।
सर जिंदा आदमी में आत्मा होती है, मरे में आत्मा निकल जाती है, लेकिन उससे आगे क्या आत्मा है तो बेचारा वो नहीं जानता।
हाँ।
और हम भी उसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय बस इतना ही बताते हैं कि देखिए आत्मा एक लिविंग एनर्जी है जो आपके मन और बुद्धि से रिलेटेड है, जिंदा आदमी सोचता है, कुछ निर्णय करता है इसलिए एक्शन करता है, मुर्दा वो नहीं कर सकता, तो एक सोल कॉन्शियसनेस का तरफ हम उसे ले जाते हैं।
जी।
और जब सोल कॉन्शियस की बात शुरू होती है तो उसे एक एटर्नल एनर्जी के रूप में हम उसका रियल परिचय देते हैं, क्योंकि वो एटर्नल एनर्जी जो थी वो जब निकल गई तो आदमी डेड कहलाता है, शरीर मर जाता है, आत्मा तो फिर भी नहीं मरती।
जी।
तो एटर्निटी का जब आभास देते हैं तो एटर्निटी से उसका मौत का भय कम होना शुरू हो जाता है। वैसे ही करेजियस होते हैं सोल्जर्स, अगर उसको मैं एक शाश्वत चैतन्य शक्ति आत्मा हूं इसका आभास करा दें और उसे लगे कि हाँ मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और ये प्रकाश जो है मेरे अंदर मुझे अंदर से प्रकाशित करता हुआ अंदर शांति की शक्ति की अनुभूति कराता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम उसको कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस कराते हैं, जब एनी टॉक ऑफ कंपेनियनहुड, तो जब कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस कराते हैं कि आप एक और ऐसी ज्योति स्वरूप चैतन्य सत्ता के बच्चे हैं और वो आपका पिता है और आपका मित्र भी है, दोनों रिलेशन जोड़ देते हैं, यानी ही इज ए फ्रेंडली फादर, मोर सो वी से ही इज मोर ऑफ योर फ्रेंड देन ऑफ एनीथिंग एल्स, देन उसको वो कंपेनियनहुड का आभास होता है कि खुदा दोस्त उसके साथ है और उसको दोस्त के रूप में वो साथ फील करता है, चलते फिरते उसको साथ चलता फिरता महसूस होता है, उससे उसको कंपेनियनहुड का आभास हो जाता है, तो सॉलिट्यूड की जो प्रॉब्लम है वो कम होनी शुरू हो जाती है।
क्या आपने पर्सनल लेवल पर इस चीज को फील किया, कब आपने स्टार्ट किया मेडिटेशन और आपको कैसे अकेलेपन की यदि फीलिंग होती थी तो वो कैसे खत्म हुई, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा?
मैं उसमें दो बातें बताना चाहूंगा। जब मैं इंडियन एयरफोर्स में सेवारत था और मैं 70s की बात कर रहा हूं, तो उस समय मेरी वाइफ को कहीं बाहर जाना पड़ा, उन्हें खास सेवा के लिए बाहर भेजा गया, तो कुछ वर्ष तक वो बाहर रही, तो नेचुरली उस समय अकेला रहना होता था। उस समय कंपेनियनहुड जब हम योग करते थे तो योग में बड़े अच्छे अच्छे हम गीत बजाते थे और उस गीत में जब आप गाते थे साथ साथ सचमुच उठकर मुझे नृत्य करने की इच्छा होती थी, जैसे मैं अपने खुदा दोस्त के साथ हाथ में हाथ लेकर के झूम रहा हूं। ऐसे आभास भी बहुत सुंदर होते थे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो एटर्नल एनर्जी की बात होती है, ये थोड़ा एक सूक्ष्म चीज है, और खासतौर पर वक्त आने पर उसकी कंपेनियनहुड का कैसे आभास होता है वो मुझे एक अनुभव भूलता नहीं है। दिस इज 77 की बात है, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था और हम लोग एक स्पेशल मिशन के लिए सुपर हाई अल्टीट्यूड में 13,000 फुट की ऊंचाई पर हमें कुछ दिन रहने के लिए जाना था। तो लोगों को अच्छी तरह से अभ्यास कराया गया, 11 किलोमीटर की जॉगिंग कराते थे हम, ताकि वे इतने टफ हो जाएं कि उन सुपर हाई अल्टीट्यूड पर जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो। सब तैयारी करके हम लोग 7 का करीब हमारा ग्रुप था, जिसमें 2 कुक्स थे और वो एनसीज थे, नॉन कॉम्पिटेंट थे, सोल्जर्स जैसे रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे। कुक का रोल ऐसा होता है कि उसको ट्रेनिंग कराने की हमने आवश्यकता ही नहीं समझी। मिलिट्री वाले जो हमारे एयरफोर्स के जवान थे उनको भी कराई, एक आर्मी का था उसको भी कराई। तो हम लोग तो बहुत आराम से जा रहे थे, और फिर भी जब आप सुपर हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं और पहली बार जा रहे होते हैं तो थकावट तो होती है। तो आधे सफर के बाद समझिए करीब 3 किलोमीटर चले होंगे, और सुबह 6 बजे 6:30 बजे हम चले थे, और 9:30-10 बजे तक हम थक गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। फिर हम थोड़ी देर रुके, फिर हमने चलना शुरू किया। तो थोड़ी देर के बाद एक बंदूक के गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, अगर कोई सैनिक बंदूक छोड़ देता है तो कमांडिंग ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है, स्वाभाविक। उसको ये क्या किया इसने? तो मैंने उसको टफ निगाह से देखा, और उसने बड़े उसकी आंखों में ऐसी बेचारे की दयनीय स्थिति थी, जिससे बोला था कि सर मैं क्या बताऊं, या ये वेपन मेरे साथ चल सकता है या ये शरीर चल सकता है। तो मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा कम ऑन लिफ्ट योर वेपन, उठाया उसने। और उठा के बाद थोड़ी दूर और गया, फिर रुक गया, फिर छूट गया वेपन। जब ऐसी परिस्थिति देखी तो मुझे ही रहम आने लगा, और मुझे ख्याल आया कि वेल यू मस्ट अंडरस्टैंड दो यूर एज एन ऑफिसर यू गेव ट्रेनिंग टू द जवान्स एंड टू द आर्मी सुबेदार, बट नॉट टू दीज कुक्स। इनको तो ऐसे हमने एक यूनिफॉर्म सी पहना के और राइफल दे दी और वो आ रहे हैं। एनसी को ऐसा ही होता है। तो मैंने उसकी राइफल उठा ली, कंधे पे ला दी और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर बाद और पहुंचे, समझो 2/3 डिस्टेंस पूरा हो गया, करीब 12:30 बज चुके थे, और करीब 2 किलोमीटर बाकी थी मंजिल, और दूसरी आवाज आई। तो मैंने दूसरे को देखा, पहला बूढ़ा थोड़ा कुक था, दूसरा नौजवान था। तो नौजवान की हाथ से भी गिर गई, और फिर भी उसकी आंखें देखे तो एकदम ना उसके नैनों में एक बड़ा भय सा कि छूट तो गई, और उठाने की कोशिश भी कर रहा लेकिन चेहरे से थकावट साफ दिखाई दे रही। मैंने कहा डोंट वरी, मैंने उसका सेकंड वेपन बिठा लिया। मेरी उम्र अच्छी थी, 30 साल की उम्र में आदमी कुछ भी कर लेता। दोनों वेपन्स मेरे पास थे, मेरा अपना छोटा वेपन था, मेरा पीछे थोड़ा सामान भी लेके चलना होता है। और जब हम चलने लगे तो मुझे उस समय ख्याल आया कि मैंने कहा खुदा दोनों वेपन तेरे पास आ गए, तेरा अपना वजन ही पहले से शरीर का दुगना हो गया,
बिल्कुल
अब मैं कैसे चलूंगा तेरे साथ इतने दूर तक। तो कहते हैं मुझे अपना समझ कर क्या रहे हो।
अच्छा,
जैसे आवाज आती है मुझे, और मुझे एक लाइट जैसे एक ज्योति बिंदु सा प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया, और एक आवाज निकलती, बच्चे मैं तेरे साथ हूं ना, तो मुझे देखते देखते पीछे पीछे आ जाओ। इट वॉज सेट ऑफ वाइब्रेशन फ्लोइंग टूवर्ड्स मी, इट वॉज अ वेरी क्लियर मीनिंग दैट आई मस्ट फॉलो दैट लाइट, एंड देन आई रियली सॉ दैट लाइट एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट। और उतनी सूदिंग किरणें आ रही थी कि मैं बिल्कुल अपना ही देहभान भूल गया, खुद ही मैं लगा कि मैं भी एक लाइट के आकार का हूं और मैं भी प्रकाशमय बिंदु हूं, और बस जैसे हम एक दूसरे के पीछे खींचे हुए चले जा रहे हैं, और वो लाइट जैसे आपको कशिश कर रही है। मुझे अच्छी तरह याद है करीब 2 घंटा हम चले होंगे, 2:30-3 बज गए थे जब हम लोग पहुंचे, लेकिन वो 2 घंटा हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जबकि 2/3 डिस्टेंस के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमी रुकता है, क्योंकि मुझे 2 घंटे पता ही नहीं लगा, और मैं जैसे कोई पंछी की तरह उड़ता है ऑलमोस्ट, उस फीलिंग से मैं उस लाइट के पीछे बड़े हल्के से भाव से बहुत एक खुशी की स्थिति में चला जा रहा था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि देखो वो मुझे मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ चल रहा है। और पीछे मैंने मुड़कर बीच में देखा भी तो जवान भी ने जैसे घिसटते हुए अपने को चले आ रहे थे। नाउ दे हैड नो चॉइस, दे इवन कुड नॉट सिट बिकॉज द लीडर वॉज वॉकिंग। और फिर भी मैं जैसे जाकर वहां पहुंचा, मैं बड़ा फ्रेश बैठा हुआ था, और वो थोड़ा दूर पीछे एक एक करके बैठने शुरू हो गए कि देखा तो साहब पहुंच गए हैं, दिखाई दिखे दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम बैठ लें। थोड़ी देर राहत ली, उन्होंने आए और आकर के उन्होंने साफ साफ पूछा कि सर सच्ची सच्ची बताओ
ये कैसे हो गया।
आधे के बाद हम भी थके आप भी थके, دوسرا ویپن اٹھانے میں آپ کو ہیسیٹیشن ہوتی میں نے دیکھا، مگر میری مجبوری تھی میں نے آپ کو اٹھانے دیا، مگر اس کے بعد تو سر آپ ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی فرشتہ اٹھتا ہوا جا رہا اور ہم کھچے کھچے آپ کے پیچھے چل رہے تھے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں میڈیٹیشن کے دوارا خدا دوست کی آپ کے ساتھ چل کر آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ تو وہ سین مجھے اتنا کلیئر ہے کہ میں اس سین کو ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے میں 13,000 فٹ کی اونچائی تک چلا بھی گیا اور میں فریش بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ لوگ آئے، پھر ان کو تھوڑا سا راحت دے کر کے شام کو 4 بج گئے تھے، تو پھر میں نے کہا بھائی کھانا تو بنانا ہوگا۔ اور اس دن مزے کی بات یہ ہوئی کہ کھانا بنانے میں 2 گھنٹے لگائے انہوں نے دال پکانے میں
جی،
تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا یار 2 گھنٹے ہو گئے تیری دال ہی نہیں پک رہی، تو کہتا سر یہ سپر ہائی الٹیٹیوڈ کا ہم کو بھی دھیان نہیں تھا، پریشر کوکر تو ہم لائے ہی
نہیں
اور ہم تو صاحب انگیٹھی جلا کر کے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم لوگ پریشر کوکر لے آئیں گے۔ تو دونوں باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، جب کسی آپ آپریشن کے لیے نکلتے ہیں اگر کوئی اسپرچل انرجی آپ کو ساتھ دینے کا آبھاس کراتی ہے تو وہ اس کا ایک اپنا الوکک انبھو ہوتا ہے۔
یہ تو آپ نے بہت ونڈرفل ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا کہ کیسے، اور وہ جو رائفلز
اپنے وزن کا کوئی آبھاس نہیں تھا۔
تو ایک یہ تو ایک واقعہ آپ نے سنایا، اس کے علاوہ میڈیٹیشن کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟
تو نیدو نے ایک نیا سسٹم ہمارے آشرم میں جسے آج کل ہم ٹریفک کنٹرول کا ریکارڈ کہتے ہیں، ایک ریکارڈ بجتا ہے اور 2 منٹ کے لیے جو بھی ہم کاریہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا رک کر کے اس ستھان پر 2 منٹ استھر ہو کر کے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ تو 2 منٹ کے اندر ہی اپنے آتم سوروپ میں استھت کرنا، جمپ اپ کرنا، پرماتما سے کنیکٹیویٹی کا ایکسپیرینس کرنا، انرجی فلو ہونا، یہ مجھے ایک بڑی سوبھاوک پرکریا کے روپ میں شروع سے وردان کے روپ میں کہوں گا ملا ہوا ہے
جی۔
تو وہ جب کرتے تھے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد جو اس سمے تک ایکومولیٹڈ سٹریس ایک دم غائب ہو جاتا۔
بالکل،
نارملی ہم لوگ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، میں نے بھی ان دنوں بہت چائے پینا شروع کر دیا تھا، دیٹ واز بیکمنگ ٹو مچ، لیکن جیسے یہ پریکٹس شروع کی تو چائے کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہو گئی اور میں بڑا فریش فیل ہو کر کام کرتا تھا۔ جیسا فریش آفس جاتے تھے 7 بجے، شام کو 7 بجے ایسے فریش آتے تھے۔ تو یہ میں نے ایک خاص ایک طریقہ دیکھا کہ میڈیٹیشن بیچ بیچ میں سے کام کرتے ہوئے بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے جو کنٹینیوڈ ورک کی اسٹریس ہوتی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں
جی۔
ایسے لانگ آورس کو ہم بریک کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک بینیفٹ رہتا ہے۔
جو پریزنٹ ٹائم میں سیکیورٹی ونگ کی سروسز ہیں وہ کس طریقے کے ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جن جن لوگوں کو بھی آپ نے کورسز کرائے ہیں اور بہت ساری ٹریننگز دی ہوں گی، تو ان لوگوں کو کتنے ٹائم میں فرق پڑا، کیسے ان کی لائف میں چینجز آئے؟
جہاں تک کورسز کی بات ہے، ہم لوگ پچھلے 12 سال سے یہ کاریہ کرتے آ رہے ہیں، اور پہلے آرم فورسز میں زیادہ تھا رجحان کیونکہ میں خود ہی آرم فورسز میں رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے پیراملٹری فورسز کا بھی کافی کنیکشن ہمارا جٹنے لگا، ایون بارڈر سیکیورٹی فورس کے کچھ لوگ تو ہم کو پہلے ونگ کے کاریہ کی شروعات میں بھی ہم کو ایسے ملے تھے۔ ایک اے ڈی جی تھے مسٹر کماوت، دو ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور وہ اس سمے آندھرا پردیش پولیس کاڈر میں تھے، لیٹر وہ بی ایس ایف میں آئے اور ڈائریکٹر جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے۔ ان کی ہم کو بہت اچھی سپورٹ ملتی رہی اور ان کو بہت شوق تھا، تو پیراملٹری میں بارڈر سیکیورٹی فورس کی طرف ہمارا رجحان اس کی وجہ سے بھی تھا۔ پھر ہماری انٹرنل سیکیورٹی اکیڈمی ہے ماؤنٹ آبو میں، اس میں سی آر پی ایف کے لوگوں کی وشیش ٹریننگ ہوتی ہے، آج کل بہت ورشٹ ادھیکاریوں کی ہوتی ہے، پہلے نارمل گزٹڈ آفیسرز کی بھی ہوتی تھی اور اب ہماری اکیڈمی کا ایک پورشن گڑگاؤں شفٹ ہو گیا، اس لیے یہاں بہت سینئر آفیسرز کا انٹریکشن کورسز ابھی بھی چلتے ہیں۔ سی اے ایس ایف ایک اور ہے انڈسٹریل سیکیورٹی، جس میں بھی کافی پروگرام چلتے ہیں، اور 2012 میں ہم نے ایک بہت اچھا کاریکرم کیا تھا، میگا پروجیکٹ ہم اسے کہتے ہیں، میگا پروجیکٹ ٹو انہینس دی انر اسٹرینتھ آف دی ملٹری اینڈ پیراملٹری فورسز کے لیے۔ تو اس میں پورے بھارت ورش میں ہم نے راؤنڈ لگایا تھا اور کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک، کشمیر میں بھی سیاچن تک، اور جب سیاچن جانا ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے اونچی سڑک کے سب سے اونچے پوائنٹ خاردنگلا ہے ایک پوائنٹ جو 18,500 فٹ اونچا ہے، اس کو بھی پار کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی ہمیں ایک کاریکرم کرنے کا بڑا اچھا اوسر ملا۔ اور پھر دکشن بھارت میں، اتر بھارت میں، پشچم میں، پورو میں، ہم لوگ منی پور میں منی پور رائفلس کے لیے پروگرام برما بارڈر تک کر کے آئے، ادھر بھوج میں پشچمی بارڈر کے اوپر ہم نے واٹر ونگ ہے ہمارا، وہاں بھی پروگرامس کیے، آرمی نیوی ایئر فورس میں بھی کافی پروگرامس ہوئے۔ تو پچھلے 3-4 وشوں سے تو بہت انٹینسو سیوائیں بڑھ گئی ہیں
جی،
اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ اسپیشل ٹریننگز کرانی پڑیں گی اپنی فیکلٹیز کے لیے، تاکہ ہمارے پاس ایک لارج اسٹرینتھ آف فیکلٹیز بن جائے اور ہم جو بڑے بڑے ٹاسک آگے آنے والے ہیں بارڈر سیکیورٹی کے یا انڈسٹریل سیکیورٹی کے، ان کو بھی اچھی طرح سے کر سکیں۔ ایسا ہم پلان بنا رہے ہیں.
بھائی صاحب آپ نے آج اتنی ساری ہمیں انفارمیشن دی اور اتنے ونڈرفل ایکسپیرئنس جو ہے شیئر کیے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں, تو ایک ان کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یدی ہم گھر سے دور رہتے ہیں تو کیسے ایک خدا کو ساتھی کے روپ میں یدی ہم یوز کرتے ہیں ہماری کتنی ساری پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں. یہ آپ کے اس ایگزامپل سے تو بالکل کلیئر ہے. تو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
میں بھی آپ کا شکریہ. تھینک یو. اوم شانتی.
تو دیکھا آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں آج کتنی بہترین ڈسکشن ہماری ہوئی ہے کہ کیسے جو سلیپ کے لیے ہماری جو سائیکالوجی بلڈ اپ ہو چکی ہے کہ 7-8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے, اور اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کو سٹریس بلڈ اپ ہو جائے گی. لیکن سلیپ کین بی مینجڈ. اس کو یعنی آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ بھی ہے یا 2 گھنٹے بھی ہے, اس دوران پر بھی ایک ہیلدی نیند آپ لے سکتے ہیں اور خود کو فریش انوبھو کر سکتے ہیں. اور یدی آپ کا لانگ ورکنگ آورز ہے, آپ نے صبح میڈیٹیشن کیا شام کو کیا, لیکن اس دوران میں بھی یدی آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو وہی انرجی وہی فریشنس اس ٹائم بھی فیل ہو سکتی ہے. یہ ایپیسوڈ ہم یہی سماپت کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے ملیں گے ایک انیہ وشے کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. نمسکار. اوم شانتی.
We are the wings of Brahma.